It is a great thing if we can hear God's voice in our life.
ये बहुत ही महान चीज है कि यदि हम परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में सुन सकते हैं.
If God is still speaking to us, that is an indication that He is interested in our lives.
यदि परमेश्वर आज भी हमसे बातें कर रहा है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में रुचि रखता है.
He has not rejected us, but He has hope for us.
और परमेश्वर ने हमको इनकार नहीं किया, लेकिन हमारे पास आशा है.
So with great gratefulness in our heart, we should be able to, whenever God speak to us, that should be our attitude. We should be grateful that God chose to speak to us.
और जब कभी परमेश्वर हमसे बात करता है, हमें धन्यवादी बनना है कि परमेश्वर ने हमको चुना कि वो हमसे बातें करे.
I wish to share something from the book of Haggai.
और हगाई की पुस्तक से कुछ बांटना चाहता हूँ आप लोगों के साथ.
Haggai is a small book in the Old Testament.
और पुराने नियम में हगाई जो है एक बहुत ही छोटी किताब है.
Just two chapters.
और दो ही किताब है.
And he himself was not a very well-known, he himself was not a very well-known prophet.
और इतना वो प्रसिद्ध नबी नहीं था.
But we can learn something very useful from the book of Haggai.
लेकिन हगाई की किताब से हम कुछ उपयोगी चीजें सीख सकते हैं.
The background of this book is.
और पृष्ठभूमि इस पुस्तक का इस प्रकार है.
God brought some of the captives from Babylon. Back to Jerusalem.
और परमेश्वर बेबीलोन की बंधुआयु से कुछ यहूदी लोगों को यरूशलेम वापस लेकर आए.
And they started settling down in that place.
और यरूशलेम में वो लोग बसने लगे.
They started doing well. They started cultivation. They started doing business work. They started prospering.
और वो आगे संपन्न होने लगे, खेती करने लगे, व्यवसाय करने लगे, आगे बढ़ने लगे.
But it continued. But the temple in Jerusalem was broken, torn down and burned down.
लेकिन वहां पर यरूशलेम का जो मंदिर था पूरी तरह से गिरा हुआ, जलाया हुआ था और ऐसी गिरी हुई अवस्था में था.
God's intention was, one of the reason why God brought God's people back to Jerusalem is that they'll get an opportunity to build it again.
और एक इरादा परमेश्वर का लोगों को उस बंधुआई से यरूशलेम में लाने का यह था कि वो उस मंदिर को और एक बार बनाए.
बट Jews, when they came back, when they started prospering, their own things started going, they neglected the work of the temple.
लेकिन जब यहूदी वहां पर यरूशलेम में आ जाते हैं, वो अपनी ही बातों में मगन हो जाते हैं और परमेश्वर का मंदिर का निर्माण करना उसको वो नजरअंदाज कर देते हैं.
It is like, no, I used to imagine like, you know, every day they, like we go to work, get up, do everything, we go for work. On the way, they see entire the temple of God, which had such glory in the past, is broken down, torn down, its gates are burned. They are seeing that.
और जैसे कि वो हर रोज अपने काम पे जाते, सुबह उठ के जाते, रास्ते में उस मंदिर को देख पाते जो पूरी तरह से गिरा हुआ, टूटा पड़ा है और जलाया जा चुका है.
And while returning to my work also, they are seeing this temple of God in the same years it is lying down in a devastated situation.
और जब वो काम से वापस लौटते उसी प्रकार उस परमेश्वर के मंदिर को पूरी तरह से उस टूटी हुई, उस उजड़ी हुई अवस्था में देखते हैं.
But they are thinking, okay, there is time for God's temple, there is time.
लेकिन वो सोचते कि परमेश्वर के मंदिर के निर्माण के लिए अभी भी समय है.
I will look after my own thing. I should be busy with my work.
और मुझे अपने जीवन को देखने के लिए, अपने काम करने के लिए व्यस्त रहना है.
So they postponed about their thoughts on building, rebuilding God's temple.
और परमेश्वर का भवन निर्माण करने का जो विचार था उस काम को वो लोग आगे ही वो उसको आगे करते रहे काम को.
So that was the attitude those people had.
और इस प्रकार का स्वभाव उन लोगों में था.
They outright neglected God's work. The rebuilding of God's temple.
और परमेश्वर का भवन जो है उसको निर्माण करने की जो प्राथमिकता को उन्होंने नजरअंदाज किया.
Forgetting all God has done in their life in the past.
और भूतकाल में परमेश्वर ने जो कुछ उनके लिए किया वो सब कुछ भूलते हुए.
And they focused, they were not involved in any sinful, they just focused on their own personal work.
और वो कोई पाप में चीजों में नहीं थे लेकिन वो अपने ही व्यक्तिगत जीवन के अंदर व्यस्त थे.
God was patient with them, waited 1 year, at least next year they will do something. He again waited in third year, fourth year, fifth year, like years passed. God waited for them years.
और परमेश्वर एक साल, पांच साल, सात, ऐसे बहुत साल बीत गए, परमेश्वर राह देखता था.
But even after 10, 15 years, people are the same.
लेकिन 10-15 साल बीतने के बाद भी लोग वैसे ही थे.
They have no interest in rebuilding the broken fallen the temple of God.
और परमेश्वर का गिरा हुआ, टूटा हुआ मंदिर बनाने के लिए उन लोगों के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं थी.
Then God had to do something in their life to invite their attention.
और परमेश्वर को उनके जीवन में कुछ ऐसा करना पड़ा ताकि उनके ध्यान को अपनी तरफ खींच सके।
सो वी रीड इन हगाई चैप्टर 1 वर्स 2
हगाई पहला अध्याय वचन 2
दिस सेज द लॉर्ड ऑफ होस्ट दिस पीपल सेज द टाइम हैज नॉट कम इवन द टाइम फॉर द हाउस ऑफ द लॉर्ड टू बी रीबिल्ट।
सेनाओं का यहोवा कहता है ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है।
So they are taking various time. God's time, there is time. Why we should hurry about it? That was their attitude. Time was not, there is time, plenty of time.
वो उनका स्वभाव इस प्रकार था कि बहुत सारा समय अभी परमेश्वर का भवन बनाने का समय अभी नहीं आया है।
Then God spoke to his prophet Haggai to them.
और प्रभु परमेश्वर हगाई नबी के द्वारा उनसे बातें करता है।
In verse 4 we read, verse 4, Haggai chapter 1 and verse 4. Is it time for you yourself to dwell in paneled houses while this house lies in lies desolate?
क्या तुम्हारे लिए अपने छत वालों घरों में रहने का समय है जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है?
So God spoke to them. You all live in nice, nice houses. When you came, nothing. I blessed you. You are flourishing. Now you all had your own individual houses, paneled nice houses, and you want to neglect my house. This was God was speaking to them.
परमेश्वर उनसे कहता है कि जब तुम यहाँ पर वापस आए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने तुम्हें बढ़ाया, आशीष दी, खुद के घर हुए, अच्छे अच्छे घर आपने किए और आप मेरे घर बनाने के लिए नजरअंदाज करते हैं।
Then God challenged them, consider your ways.
और परमेश्वर उनको चुनौती देता है कि अपने मार्गों को जांचो या देखो।
I want to challenge you, is this right?
और मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ, क्या ये सही है?
But you re-look at your thought and your attitudes, your priorities.
और आपकी प्राथमिकता, आपके सोच को, आपके जीवन को देखे कि क्या है वो।
So we can see God is talking to his people 2-3 times in that chapter. Consider your ways.
और इस अध्याय के अंदर 2-3 बार परमेश्वर लोगों से बात करता है कि अपने मार्गों को जांचो।
This is something personally, when I meditated, something challenged me as well.
और व्यक्तिगत रूप से मनन करने के बाद मुझे भी चुनौती मिली इस वचन से।
When our attention, interests are in our own things, need not be necessarily sinful things, rightful things.
और हमारा कई बार ध्यान अपने खुद के जीवन की बातों के ऊपर लगा रहता है, कई बार ये पाप में चीजें नहीं होती है।
We all have to work, we have to earn, we have to toil, all necessary God's commandments.
और ये परमेश्वर की आज्ञा, हमें कमाना होता है, हमें मेहनत करना होता है, ये अच्छी बातें हैं।
And in that process, we should not neglect the priority in God's heart.
लेकिन इस प्रक्रिया के दरमियान परमेश्वर के हृदय की जो प्राथमिकता है उसे हमको इनकार नहीं करना है।
So God was trying to wake up their conscience, saying, "Consider your ways."
और परमेश्वर उनके विवेक को जगाते हुए कहता है कि अपने मार्गों को जांचो।
So still there is no change. God had to do something in their lives to wake them up.
और फिर भी कोई बदलाव नहीं था, परमेश्वर को कुछ करना पड़ा ताकि उनको जगा सके।
So God worked in situ. They labor, they toil, everything. God had to intervene in that situation. And a time came when we can read that in verse 6.
वचन 6.
You have sown much, but harvest little. You eat, but there is not enough to be satisfied. You drink, but there is not enough to become drunk. You put on clothing, but no one is warm enough, and he who earns wages to put into purse with the holes.
तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है।
And then again God asks, consider your ways.
और फिर परमेश्वर उनको कहता है कि अपने चाल चलन पर सोचो।
Now he, what happened? It they worked very hard at time when these people are not listening. God had to do in their practical lives.
और ये लोग बहुत ही मेहनत करने वाले, काम करने वाले लगते, लेकिन वो सुन नहीं पा रहे थे। परमेश्वर ने उनके व्यवहारिक जीवन के अंदर कुछ करना पड़ा ताकि वो परमेश्वर की आवाज को सुने।
So it is very well represent a life neglecting God's ways, what could be the result?
और ये इस तरह से हम इसको प्रदर्शित कर सकता है कि जो जीवन परमेश्वर के मार्गों के ऊपर ध्यान नहीं देता है वो किस प्रकार रहता है?
Everyone is working so hard with the best of their ability, and whatever they earn, it is as if they whatever earning is put in a bag with full of holes.
और बहुत सारी मेहनत करके, काम कमा के, वो मेहनत करके मजदूरी तो कमाते, लेकिन वो छेद वाली थैली में रखने के समान है।
You can imagine a bag having holes, coins are put in, what will happen?
और आप सोच के देखिए, छेद वाली थैली में अगर आप सिक्के रखेंगे तो क्या होगा?
All that earned hard level one way or will go disappear one after the other.
और एक के बाद एक ये गिरते जाएगा।
And result is they do lot of hard work, toil, everything, neglecting God, God's ways, but no result, no fruit of it.
और यहाँ पे बहुत सारी मेहनत तो करते हैं परमेश्वर के चाल चलन को, परमेश्वर के मार्गों को न सोचते हुए, लेकिन उसका परिणाम क्या है? कुछ भी फल नहीं मिल रहा है.
It's either like in Bombay we can say sometime, you know, we all experience sometime when a pickpocket suddenly take purse away.
और इस बॉम्बे के अंदर अगर सोचे तो वो पॉकेट मारने वाला जैसे वो कहीं पे चोरी कर लेता है तुम्हारा.
A good amount of money suddenly lost.
और कुछ ज्यादा पैसा होता है तुरंत वो खो जाता है.
Sometimes maybe through a doctor, a sickness, etc. Lot of money earned, it just goes.
और डॉक्टर के द्वारा बहुत सारा पैसा कमाया हुआ उनके पास चले जाता है.
We don't see the favor of God, the blessing of God in our labor.
और हमारे जो कामकाज हमारी मेहनत के ऊपर हम परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं खोजते हैं.
So that is what happened to the Jews when they neglected God, they neglected the building of God's temple. God had intervened in their lives.
और जब यहूदी लोगों के जीवन में उन्होंने परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करने का इनकार या नजरअंदाज किया, परमेश्वर ने उनके जीवनों से व्यवहार किया.
It is all with the sole purpose of inviting their attention.
और ये उद्देश्य इसी के साथ था कि उनके ध्यान को परमेश्वर की तरफ लाए.
We also read that in God told in verse 8, go up to the mountains, bring wood, rebuild the temple, that I may be pleased with it and be glorified.
8 वचन, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ, इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा.
And in verse 9 also,
9 वचन,
you look for much, but behold, it comes to little. When you bring it home, I blow it away. Why? Because declares the Lord of hosts, because my house which lies desolate, while each of you runs to his own house.
तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है. और जब तुमने घर ले आए, तब मैंने उसको उड़ा दिया. सेनाओं की हवा की वाणी, ऐसा क्यों हुआ?
See, lot of money, everything, but God just blew it away.
और बहुत सारा पैसा आप लेकर आए, परमेश्वर ने फूक मारकर जैसे उसको उड़ा दिया.
To receive their attention.
ताकि आपका ध्यान उसकी तरफ अब वो लेकर आए.
God even had to go to the extent of stopping the sky from giving rains.
और परमेश्वर को आकाश में से वो बारिश को भी बंद करना पड़ा.
And dew from this earth.
और इस जमीन से निकलने वाली उपज को भी.
So that the people repent and trust that it is God who provides everything.
ताकि लोग मन फिराए और कहे कि परमेश्वर है जो मेरे लिए पूरा करता है.
And fortunately, there was a result of Haggai's prophecies.
और भाग्यपूर्ण यहाँ पे देखते हैं कि उसने जो हगाई नबी की जो भविष्यवाणी उसका यहाँ परिणाम आता है.
The Jews realized their mistake.
और यहूदी लोगों ने अपनी जो गलती थी उसको एहसास किया.
They applied their heart to listen to God's voice and obey Him.
और परमेश्वर के हृदय को आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को हृदय को लगाया और उसका आज्ञा पालन किया.
They listened to Haggai's voice and started to interest to rebuild God's house.
और हगाई की आवाज को उन्होंने सुनाया और परमेश्वर के भवन का निर्माण करने के लिए उनको दिलचस्पी दिखाई.
And their hearts were stirred by the Holy Spirit.
और पवित्र आत्मा द्वारा उनका जो हृदय था वो पूरी तरह से कार्य में आया.
And God again blessed them when they chose to give attention to God's face. God blessed them again. The house was built and God blessed them. Their life also.
और जब परमेश्वर का भवन निर्माण करने के लिए उन्होंने अपने ध्यान को लगाया, परमेश्वर ने उनको आशीष दिया.
So this is something which we can apply in our own life.
और ये एक ऐसी चीज है जो हमारे खुद के जीवन में हम लागू कर सकते हैं.
We should not forget that the source of our blessing, our provision is our heavenly Father.
और हमारे आशीष के कर्ता जो है, हमारा पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो स्वर्गीय पिता को हमें भूलना नहीं है.
We should not be working, toiling, good everything away from without seeking God's help and favor in our life.
और परमेश्वर की खोज उसके अनुग्रह के बिना उससे दूर होके हमें बहुत ही मेहनत या बहुत ही काम करने की जरूरत नहीं है.
It will be like Peter the whole night toiling. He was an expert fisher, but he all night he toiled, he caught nothing.
वो पतरस के समान बहुत ही माहिर वो मछुआरा था, लेकिन पूरी रात उसने मेहनत किया लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं किया.
But when Jesus told put your net on the right side, they could catch something which had never happened in their life.
और यीशु ने कहा कि तेरी जो राइट साइड पे तू उस जाल को डाल, और बहुत सारा उन्होंने जो अपने जीवन काल में नहीं ऐसा चमत्कार देखा वहाँ.
So it is always a great thing to seek to listen to God's voice, willing to correct our ways and ensure that God's presence is there in our life.
और परमेश्वर की आवाज को सुनना और उस प्रकार उसकी आज्ञा का पालन करना इसमें एक बहुत आशीष है.
Our priority should be the same priorities which God has in His heart.
और परमेश्वर की प्राथमिकता उसके जो हृदय में वही प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए.
We should be able to own the priorities of God's heart to ourselves.
और परमेश्वर की जो जिम्मेदारी है उसको हमें अपने जीवन के अंदर लेना है.
Do you think God is not interested to fill our stomach?
और क्या परमेश्वर इसकी रुचि नहीं रखता? आप सोचते नहीं कि वो हमारे पेट को भरे?
Do you think God is not interested in our children's education?
क्या परमेश्वर हमारे बच्चों के अभ्यास के अंदर क्या वो रुचि नहीं रखता?
Do you think God is not interested in our career and everything? God really wants to bless us in every aspect of our life.
और क्या वो करियर में हमारे हर एक क्षेत्र के अंदर परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है?
And there is a blessing which we can receive from God when you are in the ways of God, even you are in the center of God's will.
और जब हम परमेश्वर की इच्छा और उसके मार्ग के केंद्र में होते हैं, तब हम परमेश्वर से प्राप्त आशीष ले सकते हैं.
Otherwise, our human effort and toil, we can do a lot of toil without fruit, without seeing the benefit of it.
और बहुत सारी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फल या परिणाम हम नहीं देखेंगे.
We can waste away our years and opportunities.
और हमारे सारे मौकों को, सारे सालों को हम बर्बाद कर देंगे.
With unfulfilled life.
और एक ऐसा जीवन जिएंगे जिसका कोई उसका संपूर्णता नहीं है.
So let there be an earnest desire in our heart to give priorities our activities, our thoughts of our heart.
और हमारे अंदर ऐसी चाहत हो कि हमारे जो कार्य है, हमारे जो विचार है, उसके अंदर हम परमेश्वर को प्राथमिकता दें.
What is important to God, it is important to me also.
और जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, वो मेरे लिए भी होना चाहिए.
Such an unspeakable blessing in that.
और इसके अंदर बहुत एक अद्भुत आशीष है.
So in the Old Testament, again, temple of God, in the new covenant, we can say the church.
और पुराने नियम का जो वो मंदिर था, नए नियम के अंदर वो परमेश्वर की कलीसिया है.
I'm not talking about CFC.
और मैं कोई CFC कलीसिया या कोई संस्था के बारे में, बिल्डिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ.
But God is interested what are our priorities.
लेकिन परमेश्वर रुचि रखता है कि हमारी जो प्राथमिकता है वो क्या है आज.
Deep in our heart, do we really trust God?
और हमारे हृदय की गहराई में क्या सच में हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं?
Deep inside is a real desire to honor God through whatever we do.
और हमारे हृदय में क्या ये चाहत है कि जो कुछ हम करते हैं उससे परमेश्वर का आदर करें?
Or it's a life of convenience.
और क्या हमारा जो आरामदायक क्या ऐसे जीवन है?
Think that this is what right and my ways. We focus on our own interests.
हम लोग हमारी जो सोच है, हमारी मुझे जो अच्छा लगता है, मेरे ध्यान के अनुसार मैं चलता हूँ.
And neglecting missing the blessing and favor of God in our lives.
और परमेश्वर की आशीष और उसका जो अनुग्रह है, उसको मैं नजरअंदाज करता हूँ, खो देता हूँ.
We can listen this to God says that. Consider your ways.
परमेश्वर एक कहते हुए आज हम सुन सकते हैं कि अपने चाल चलन के बारे में आज आप सोचे.
I just want to share something from the Old Testament again, from the life of David.
दाऊद के जीवन से मैं कुछ बांटना चाहता हूँ, पुराने नियम से.
On the same temple when it was originally built.
और यही मंदिर जो पहले बनाया गया था.
The attitude which David had.
और उस समय दाऊद का स्वभाव क्या था?
We should share a few things from 1 Chronicles chapter 29.
पहला इतिहास उसका 29 अध्याय.
1 Chronicles chapter 29.
पहला इतिहास 29 अध्याय.
I will encourage all of you when you go home, the full chapter is a wonderful chapter book in the Bible. I will encourage those who are interested to leisurely read it fully.
और आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि घर जाकर इस अध्याय को, 29 अध्याय को आप पूरी तरह से पढ़े, बहुत ही सुंदर ये अध्याय है.
So here David is telling he's in the background building the original temple of God which built during the time of David and Solomon.
और इसकी पृष्ठभूमि इस प्रकार है, दाऊद और सुलेमान के समय जो परमेश्वर का असली मंदिर जब बनाया गया उसके बारे में है.
So David is speaking about that in 1 Chronicles chapter 29 verse 1.
29 उसका एक अध्याय.
Then King David said to the entire assembly, my son Solomon, whom alone God has chosen, is still young and inexperienced, and the work is great. For the temple is not for man, but for the Lord.
फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है, केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है, काम तो भारी है, क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा.
So David is telling, first of all, the work is great, it's huge work.
और दाऊद यहाँ कहता है कि जो काम जो है बहुत ही बड़ा महान है.
And that is how we should, when we think about the church, that is how we should, such a huge work.
That is, that should we think about it. You can imagine
those times such a magnificent temple building to be, when those of us seen the Victoria Terminus, say, which a British, we know under 200 years how they built such a. That is was the temple of Solomon.
और ये सुलेमान ने जो मंदिर बनाया हम देख सकते हैं विक्टोरिया टर्मिनल में जो बड़ा वहाँ पे महल जैसा बनाया हुआ है कितना विशाल और भव्य है कितना इसमें मेहनत कितने लोगों की जरूरत होगी.
So it's a massive effort. I have a role to play. Now that should be our attitude.
और हमारा स्वभाव होना चाहिए कि मेरा इसके अंदर एक भाग है इसके अंदर.
Instead of thinking it is someone else's work, some elders will do, some other brothers will do.
और ये सोचने के बजाय कि कोई और अगुवा है या प्राचीन वो करेंगे कोई भाई और बहन करेंगे इस प्रकार नहीं.
And David also, it is not for man, it is for God.
दाऊद कहता है ये मनुष्य के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए है.
So we can again think about that. Church is not anyone's, it is for God. What I do for the church is not for showing anybody. I do it before God.
इसी प्रकार कलीसिया ये मनुष्य के लिए नहीं, जो कुछ मैं कलीसिया के लिए करता हूँ मनुष्य के लिए वो नहीं है लेकिन परमेश्वर के लिए है वो है.
So for building that temple, magnificent temple, David did lot of things.
और उस मंदिर को बनाने के लिए दाऊद ने बहुत सारी चीजें किया.
First of all, he gave, as per the rules and he said 10% or whatever he from the his heart he gave.
और अपने हृदय से 10% या जो कुछ भी है सब कुछ उसने अपने हृदय से दिया.
All that was expected to be given, he had given for building that temple.
और उस मंदिर के लिए जो भी अपेक्षित था देने के लिए सब कुछ उसने दाऊद ने दिया.
He is saying something in verse 3.
और तीन वचन में वो कहता है.
1 Chronicles chapter 29 verse 3. I really love to read this.
ये बहुत ही सुंदर वचन है.
Moreover, in my delight in the house of God, the treasure I have of gold and silver, I have given to the house of my God, over and above all that I have already provided for the holy temple.
मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है उस सबसे अधिक मैं अपना निज धन भी जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ.
He's saying all that normally supposed to be given, I have already given.
और साधारण रूप से जो कुछ भी देना चाहे वो सब कुछ मैंने दे दिया है.
And I am giving beyond that I am giving.
लेकिन कहता है उससे अधिक बढ़कर मैं भी दूंगा.
And more important, he is saying that I do this because my delight in the house of my God.
और ये सब कुछ वो कहता है इसलिए मैं करूंगा क्योंकि परमेश्वर के भवन के अंदर मेरा आनंद है.
So in the new covenant, everything what we do should be out of a delight.
और नए नियम के अंदर जो कुछ भी हम करते हैं वो परमेश्वर के लिए उसके कलीसिया के प्रति आनंद से प्रेरित होकर होना है.
So what we do before God, it should come out of a delight. It's not of a compulsion.
और जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं वो हमारे भीतर एक आनंद के साथ आना चाहिए. एक जोर जबरदस्ती से करना है इस प्रकार नहीं करना है.
Anything we do, anything we give should be out of our delight to God and to his church.
और जो कुछ हम देते हैं या जो कुछ हम करते हैं वो हमारे हृदय की पूरी पूर्ण आनंद के साथ हमको करना है जैसे हम परमेश्वर के लिए उसके लोगों के लिए करते हैं.
We know that Bible says that God loves a cheerful giver.
बाइबल कहता है कि आनंद से देने वाले को परमेश्वर चाहता है.
It's not that a calculator kind of giving.
और वो गिनती देकर देने वाला ऐसा नहीं.
There are many believers calculate to the level of 1 rupee. Giving, I should not by mistake give 1 rupee extra to God's work.
और बहुत सारे विश्वासी शायद बहुत ही गिनती देकर कि मुझे 1 रुपया ज्यादा शायद गलती से मैं दे न बैठूं परमेश्वर के भवन में.
There are others who don't even do that.
और दूसरे जो है उतना भी नहीं करते.
But important is not the quantum or quantum, but it is our attitude.
और हम ये कितना आप देते वो जरूरी नहीं लेकिन हमारा स्वभाव जरूरी है.
व्हाट आर वी गिव, व्हाट आर वी डू, आर वी गिविंग आउट ऑफ चीयरफुलनेस.
और क्या हम आनंद के साथ उस चीज को दे पा रहे हैं.
क्या गॉड, थिंक अबाउट दैट एक्सप्रेशन, गॉड लव्स ए चीयरफुल गिवर.
और उस बात को सोचे कि परमेश्वर आनंद से देने वाले को चाहता है.
नोटेड दैट गॉड लव्स ए गिवर. गॉड नॉट इंटरेस्टेड इन आवर मनी, अर्थ एंड हेवन, एवरीथिंग, ऑल दिस गोल्ड एंड Everything belongs to God.
और वहाँ ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर देने वाले को चाहता है. परमेश्वर के पास सब कुछ है, दुनिया और उसमें सब कुछ, पृथ्वी का सब कुछ उसका है.
But he loves people who have that cheerfulness in their heart when they get an opportunity to give it to God.
लेकिन परमेश्वर ऐसे देने वालों को चाहता है जब देने की बारी आती है उनके मन में एक आनंद है वो आनंद से परमेश्वर के लिए देते हैं.
So one more attitude I just want to which in David had I want to highlight.
और एक स्वभाव है उसका हम देखेंगे दाऊद के बारे में.
So when he gave, we are not going showing or say I given so much for the building temple of God more than above others. He is not doing that with that attitude.
और दाऊद ने परमेश्वर के निर्माण के जो कुछ दिया वो आगे जाके ढंडेरा नहीं पीट रहा है कि मैंने परमेश्वर के भवन के लिए सबसे बढ़कर दिया है.
In verse 14 he says that
14 वचन.
For all things come from you. He is telling God. God, what is that? I am giving. Everything has come from you only after all.
और वहाँ अंत में कहते हैं तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथों से पाकर तुझे दिया है.
And from your hand we have given to you.
और हमने तेरे ही हाथों से पाकर तुझे दिया है.
So he is saying, recognize, see that spirit. It's not that I give something and I want to show, make a show of it. I given. Or I have received everything from God and from your hand I have given.
और ये दिखावे के लिए नहीं कि प्रभु मैंने कुछ पाया और मैं तुझे दे रहा हूँ, इसलिए नहीं, पर वो कहता है कि सब कुछ जो मैंने प्राप्त किया है प्रभु तेरे ही हाथों से प्राप्त किया है.
So out of the abundance verse 16, O Lord our God, for this abundance that we have provided to build you a house for a holy name, it is from your hand and all is yours.
हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया वह तेरी ही हाथ में, तेरी हाथ से हमें मिला था और सब तेरा ही है.
So whenever we do something for the Lord's name, whenever we give something, that can be our. It's not with something out of me. I give a little bit out of what I received from God.
और जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम देते हैं, ये इसलिए होना चाहिए कि जो परमेश्वर ने हमें दिया उसमें से हम उसे करते हैं.
There is nothing to glory in that.
और उसमें कुछ महिमा या बढ़ाई करने जैसी कोई बात नहीं है.
There is nothing to think that I have done something great.
और ये सोचने की कोई बात नहीं कि मैंने कुछ महान काम किया है.
So God in his such a larger interest me, so much me, so it's a joy. I am giving out of that only.
और परमेश्वर ने अपनी बढ़ाई में अब मुझे इतना सब कुछ दिया और उसमें से मैं उसको दे रहा हूँ.
So it's a wonderful thing. We all have that attitude. And you do whatever we do, a little thing secretly or before God, in for the church, for brothers or sisters, that should be our attitude.
और ऐसा ही स्वभाव हमारा होना चाहिए कि गुप्त में हम जो कुछ परमेश्वर के लिए कर पाए या मनुष्य के लिए.
I do everything out of what I received. I have nothing to glory at all.
और जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है उस प्राप्त कर किया है उसमें से मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर पाता हूँ, उसमें घमंड करने की कोई बात नहीं है.
So in all these things, good if you all have a good attitude. We have the same priority which God has.
और ये अच्छी बात है कि ऐसा स्वभाव होना और परमेश्वर की जैसी प्राथमिकता है वैसी ही प्राथमिकता हमारी होना.
About God's temple, about God's church, we also share the same concern.
और परमेश्वर के भवन के बारे में हम भी ऐसा ही एक बोझ रखे.
I just want to share something before closing from.
अंत में कुछ बांटना चाहता हूँ.
From John chapter 2.
यूहन्ना 2 अध्याय.
13 to 16.
13 से 16 वचन.
It's a very interesting passage. John chapter 2, 13 onwards.
यूहन्ना 2 13 से आगे.
The Passover of the Jews was near, but Jesus went up to Jerusalem, and he found in the temple those who were selling oxen and sheep and doves and the money changers seated at their tables. And he made a scourge of cords and drove them out of the temple with the sheep and oxen, and poured out the coins of the money changers and overturned their tables.
यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया. उसने मंदिर में बैल, भेड़, कबूतर बेचने वाले सरापों को बैठे हुए पाया. उसने रस्सियों को कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखरे और पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ.
You can understand the temple is supposed to be holy and a place of worship is the things around it is like it's a marketplace.
और आप सोच सकते हैं कि मंदिर जो है एक पवित्र स्थान होना चाहिए, परमेश्वर का निवास स्थान, लेकिन वहाँ पे वो व्यापार का घर हो चुका है.
It's a convenient place and opportunity for people to do business. That is what one can go low.
और यहाँ पर हम देखते हैं कोई ऐसा घर बना चुका है, वहाँ व्यापार हो रहा है, वहाँ पे ऐसा स्थान हम देख सकते हैं जहाँ पे लोग नीचे की ओर जा रहे हैं.
Do you understand how Jesus took it seriously?
और हम देख पाते यीशु ने कितनी गंभीरता से इस चीज को लिया.
And he told them, take these things away. Stop making my father's house a place of business.
और यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ.
And his disciple remembered that it was written, seal for the house of God consume me.
और यहाँ पे वो लिखा है कि जब तेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी.
So we all should have such a zeal which Jesus had when we think about the house of God.
और जब हम परमेश्वर के घर के बारे में सोचते वही धुन हमारे अंदर होनी चाहिए जो यीशु मसीह में थी.
We all need to contribute work towards to ensure that it is not a business place.
और हमें यहाँ पे योगदान देना है कि वो परमेश्वर का घर जो व्यापार का घर नहीं है.
It should not be like a den of thieves.
और यहाँ वो डाकुओं की खो नहीं है.
We all have a role to play. We all should have a zeal.
और हमारे अंदर भी वो धुन होनी चाहिए. हमारा भी एक कार्य है, एक भाग है उसके अंदर करने के लिए. I
heard in many churches and people come to church to do some business like selling shares or some Amway or some chit fund or these an opportunity they come to church because that's the time we can meet everybody to do this exchange.
और मैंने सुना है कि कई बार कई कलीसिया के अंदर कुछ लोग आते व्यापार करने के लिए, कुछ चीजें बेचने के लिए, ताकि उस सभा के अंदर वो लोगों को मिलकर अपना व्यापार कर सके, बढ़ा सके.
Unfortunately, many believers have also come to that level.
और दुर्भाग्यपूर्ण बहुत सारे विश्वासी आज उस स्तर तक नीचे गिर चुके हैं.
Church has become a place of business.
और कलीसिया आज एक व्यापार का स्थान बन चुका है.
An attitude, what I can gain, that kind of attitude.
और ये स्वभाव कि आज मुझे कलीसिया से क्या मिलेगा?
It's not a good thing.
ये अच्छी बात नहीं है.
Jesus told in Matthew chapter 6:33.
और मत्ती 6:33 में यीशु ने कहा,
Seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you.
और पहले मेरे राज और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी.
I think this is a promise of God which has proven. Over the ages.
और पूरे पिछले पीढ़ियों के अंदर ये एक वायदा है जो साबित किया गया है.
And those who have learned to seek God's kingdom and His righteousness first.
और जिन्होंने परमेश्वर के राज और धर्म को खोज करने के लिए सीख लिया है,
they can testify God has added all things that is necessary.
और वे आज गवाही दे सकते कि परमेश्वर ने उनकी जो भी जरूरतें थी उनको दिया है.
That should be our testimony as well.
वो आज हमारी भी गवाही होनी चाहिए.
We can apply your heart, we can come back to that, learn to give priority to things which God gives priority.
और हमें भी अपने जीवन में से लागू करना है कि जो चीजें परमेश्वर प्राथमिकता परमेश्वर देता है, जिन चीजों को उसे हमें भी प्राथमिकता देना है.
Especially learning to learning to seek God and His kingdom first.
और पहले सबसे पहले उसके राज्य और धर्म को खोजने की हमें सीखना है.
Everything will be naturally taken care of.
और स्वाभाविक रूप से सब कुछ भी उसके द्वारा परमेश्वर चिंता करेगा. प्रभु आपको आशीष दे.
Thank the Lord for the words God spoke to us.
परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया है.
It was a challenge to me for my own life.
ये मेरे लिए एक चुनौती था मेरे जीवन के लिए.
That what was spoken today about that having the zeal for the church of God.
और जिस तरीके से मेरे अंदर वो चाहत होना चाहिए परमेश्वर के भवन के लिए.
What was coming to my heart is it has to begin at the home first.
और मेरे हृदय में यही आया कि ये इसका शुरुआत घर से होना है.
If I don't have a zeal for my own family, how can I have a zeal for the church of God?
अगर मेरे अंदर मेरे परिवार के ओर अगर वो चाहत नहीं है, कैसे कलीसिया के लिए वो चाहत बनेगी?
If I don't have a zeal that my children should hear the voice of God and they should be born again, how can I be concerned about the church that people who are not converted should be converted?
और अगर मेरे बच्चों के और मेरे अंदर वो चाहत नहीं है कि वो परमेश्वर का वचन सुने और वो परमेश्वर में बढ़े, और अगर मैं नहीं कर सकता हूँ तो कैसे मैं एक कलीसिया के अंदर जो लोग हैं जो अविश्वासी है उनको कैसे वचन को बता सकता हूँ और उनको परमेश्वर के बारे में बता सकता
हूँ. We need to have a cry and a thirst that our children will follow the Lord.
और मेरे अंदर वो थड़प होना जरूरी है, वो रोना होना जरूरी है ताकि परमेश्वर के लिए वो चाहत बना रहे.
That they don't just come to church for the sake of coming to just have their attendance, but more than that they can hear the voice of God in their life.
और सिर्फ यहाँ पे अटेंडेंस देने के लिए ना आए, लेकिन वो जो वाणी है जो परमेश्वर का जो आवाज सुनने के लिए आए.
The basic thing for a Christian is to listen to the voice of God.
और जो नई बात ये है कि परमेश्वर के वचन को सुनना.
इफ यू कैन नॉट इवन लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड देन वी आर इन अ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम गॉड.
अगर परमेश्वर के वाणी नहीं सुन सकते, वचन नहीं सुन सकते वो परमेश्वर से बहुत दूर है.
मे बी वी हैव डिसोबेड गॉड मेनी टाइम्स, बट कैन आई एटलीस्ट हियर दैट वॉइस.
बहुत बार मैंने उसका आज्ञा पालन नहीं किया, क्या मैं उसके वचन सुन सकता हूँ?
लॉर्ड आई ऑलवेज वॉन्ट टू लिसन टू यू, आई वॉन्ट टू ओबे योर वॉइस.
और मैं हमेशा यही कि आपके आवाज को सुनना चाहता हूँ, उसका आज्ञा पालन करना चाहता हूँ.
Here as brother said about Haggai, that Haggai heard the voice of God.
और जैसे हगाई के बारे में भाई ने बताया कि उसने परमेश्वर का वाणी को सुना, आवाज को सुना.
And then in the verse 12 it says Zerubbabel and Joshua, they obeyed the voice of the Lord and the words of Haggai.
और 12 में ऐसा लिखा गया कि Zerubbabel और Joshua ने मिलकर के आवाज को सुना और उनके उसके अनुसार चीजों को किया.
After I listened to the voice of God, I need to have a heart to obey Him, whatever He says.
और जैसे उसके आवाज को सुनता हूँ, उसका वचन को सुनता हूँ, उसके अनुसार मुझे आज्ञा पालन करना है.
To die to my ego and forgive others and to ask forgiveness from others.
और अपने स्वयं बुद्धि में मुझे मरना है और दूसरे से मुझे क्षमा प्राप्त करना है, मांगना है.
If there is anything to be reconciled, to reconcile it immediately.
और कुछ चीजों के अंदर मन परिवर्तन करना है, ठीक करना है, उसको तुरंत उसको ठीक करना जरूरी है.
And then after that, after he obeys, after Zerubbabel and Joshua obey the voice of God, then the 14th verse it says the Lord stirred up the harp spirit of Zerubbabel.
और जब उसने जब लोगों ने आज्ञा पालन किया, जब उन्होंने सुना, फिर हम देखते हैं कि उनका हृदय को परमेश्वर ने स्टर किया, हिलाया.
And the spirit of all the remnant of the people. And the spirit of all the remnant of the people.
और उनके सब लोगों के बीच में भी उस आत्मा को जगाया.
They came and worked on the house of the Lord of hosts.
और वो लोग सब मिलकर के उस काम उस पर परमेश्वर के भवन के काम के ऊपर लग गए.
Everything in a Christian life has to begin with God and Him stirring me.
और यही है कि परमेश्वर हमें उसका जो आत्मा है हमें उत्साहित करना है.
If I do anything out of just to with my own effort, it will all burn up one day.
और जो भी काम मैं अपने ही चीजों के बुद्धि के अनुसार करता हूँ तो वो पूरा जल जाएगा एक
दिन. So I need to as word God speaks to me, I need to do as God speaks.
और मैंने मुझे वो चीज करना है जैसे परमेश्वर मुझसे कहता है और करने को कहता है.
Whatever gifts God has given me, I don't have to use my own gifts, but what God has given me the gifts, I need to use it for others.
और जो दान परमेश्वर ने दिया है अपने इच्छा से नहीं, जो परमेश्वर ने दिया है उस दान को दूसरे के लिए इस्तेमाल करना है.
And then what happens is after I have done something, I don't feel like I have done anything because it's all given by God.
और जब भी मैं कुछ कार्य करता हूँ मुझे कुछ ऐसा कुछ लगेगा नहीं क्योंकि वो जो भी किया है परमेश्वर ने किया है.
Lord, you have given to me. When someone says something, I feel I am not done anything. It's God who has given me that gift.
और जब कोई कहता है तो मैंने कुछ नहीं किया है लेकिन परमेश्वर ने वो कार्य किया है.
इफ आई हैव अ गुड गिफ्ट ऑफ सिंगिंग, आई डोंट फील एनीथिंग बिकॉज इट्स अ गिफ्ट बाय गॉड.
और अगर मेरे पास गीत गाने का और दान है तो ये मैंने कुछ नहीं किया, ये परमेश्वर का एक दान है मेरे लिए.
इट्स एवरीथिंग अबाउट दैट ओनली, अबाउट एवरीथिंग दैट I have is from God.
और ये सब कुछ ये है कि जो भी मेरे अंदर है वो परमेश्वर की ओर से है.
If I build a house only with my own strength, it will be wood, hay and straw.
और अगर मैं घर को अपने ही बलबूते के ऊपर बांधता हूँ वो एक घास के समान होगा.
We have heard from Brother Zach also that let our house be which has gold, silver and precious stones. It will be a small thing, but it will be valuable.
और जैसे कि भाई जैक के द्वारा सुना होगा कि घर जो है वो बहुमूल्य पत्थर से बना हुआ होना चाहिए और वो मजबूत होगा.
We don't have many things to say about our church or our family, but whatever is there is done by God.
और बहुत बड़ी चीज कहने के लिए नहीं है लेकिन जो भी है वो परमेश्वर की ओर से आना है, परमेश्वर के कार्य होना है.
So for that, as Brother Danny was speaking about having a good that foundation should be very strong always.
और जैसे कि भाई रानी ने बताया कि जो नींव है बहुत ही मजबूत होना जरूरी है.
दैट आई एम टोटली फ्री फ्रॉम कंडेमनेशन,
और ताकि पूरा जो कंडेमनेशन से मैं मुक्त हो जाऊं.
इवन व्हेन आई फॉल टुडे आल्सो आई कन्फेस एंड द ब्लड ऑफ जीसस क्लेंसेस मी एंड आई वॉक in that free of condemnation completely.
और जब अगर आज भी मैं अगर गिरता हूँ परमेश्वर का जो लहू है मुझे शुद्ध करता है और उस दोष से मैं मुक्त हो जाता हूँ, आज भी उस मुक्ति से मैं चलता हूँ.
It is always necessary that I have a good strong foundation in Christ.
और मेरे लिए बहुत ही जरूरी है एक मजबूत एक अच्छा नींव होना जरूरी है प्रभु यीशु मसीह के अंदर.
अदरवाइज इफ आई जस्ट बिल्ड ऑन समथिंग विच विदाउट द फाउंडेशन इट विल ऑल कोलैप्स वन डे.
और अगर मैं ऐसे ही बिना नींव का मैं बांधता हूँ वो गिर जाएगा.
इट इज नॉट अ लिस्ट ऑफ लॉज दैट आई शुड डू, इट इज बीइंग फाउंडेड इन गॉड, फाउंडेड इन हिज लव
नियम के अनुसार करना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अंदर बना रहना, उसकी प्रेम में बना रहना, वो है.
एंड गॉड हु हैज स्टार्टेड द गुड वर्क विल फिनिश इट.
और जो परमेश्वर जो कार्य शुरुआत किया, अच्छा कार्य की शुरुआत किया है, वही उसे अच्छे तरीके से खत्म भी करेगा.
नाउ वी मे सी ऑल एवरीथिंग इज इन अ मेस, बट वी बिलीव गॉड यू हैव स्टार्टेड द गुड वर्क.
और हम अब देख सकते हैं कि अभी चीज जो है बिगड़ी हुई स्थिति में होगा, लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, वो चीजों को ठीक करके अच्छे तरीके से वो चीजों को बना के देगा.
ही विल डू इट इन माय होम.
और वो मेरे घर में करेगा.
एंड इफ आई नीड टू बी एन एग्जांपल इन द होम सो दैट द अदर्स इन द फैमिली आल्सो हैव गेट दैट ज़ील फ्रॉम मी, दैट फायर हैज टू गो फ्रॉम मी टू अदर्स इन द फैमिली.
और मैं एक उदाहरण मुझे होना है घर में, ताकि वो उदाहरण वो लोग मेरे अंदर देखे और जो आग है मेरे तरफ से उनके ओर बढ़ना है.
आई कैनॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू डू दैट. आई माइसेल्फ शुड बी अ फायर फॉर गॉड, ऑन फायर फॉर गॉड.
और मुझे मैं दूसरों के ऊपर मुझे निर्बलता नहीं करना है कि वो लोग करेंगे, मैं खुद एक आग बनना है परमेश्वर के लिए.
नॉट हैविंग दैट डिजायर ऑलवेज टू पॉइंट फिंगर्स, ही इज नॉट लाइक दिस लाइक दिस लाइक, नो आई नीड टू चेंज.
और उंगली करना नहीं, मुझे खुद अपने आप को बदलना है.
सो दैट थ्रू मी गॉड कैन ब्लेस अदर्स.
और मेरे द्वारा परमेश्वर दूसरों को भी आशीष दे सकता
है. एज अ फैमिली विल बी अ ब्लेसिंग टू अदर्स इन द चर्च.
और एक पारिवारिक रूप से हम दूसरों के लिए कलीसिया में एक आशीष के कारण बने.
प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए. सही में प्रभु कितना अच्छा है, जो हमें दिन प्रतिदिन अपने वचनों से हमें सुधारता है और चुनौती देता है हमारे जीवन के लिए. आज भी आज का वचन से ब्रदर ने सिखाया कि परमेश्वर का भवन, तो अभी जैसा लिखा है कि हगई में, भाई मोबाइल चल नहीं रहे, तो वहाँ पे लिखा हुआ है हगई पहला और दूसरा में कि परमेश्वर का भवन. जब परमेश्वर का भवन के लिए बोलते, दुनिया बोल रही है कि परमेश्वर के भवनों को बनाने की जरूरत नहीं है, तो वचन दूसरे में कहता है कि क्या ऐसा जरूरी है कि तुम हम लोग छत के नीचे अच्छे से घर में रहते हैं और परमेश्वर के भवन का निर्माण करना जरूरी नहीं है. तो पिछले टाइम पिछले संडे में भी यही हमने वचन सुना था, 30 तारीख को संडे का जो थाने में था, ब्रदर ने वहाँ भी सिखाया था कि जब नहमाया को पता पड़ा कि परमेश्वर का भवन की दुर्दशा बेहाल हो गई है, तो वो बहुत ही व्याकुल हो गया, विलाप करने लगा, रोने लगा कि मेरा परमेश्वर का भवन किस दुर्दशा में पड़ा हुआ है. तो आज हम अपने आप से मैंने सोचा कि अब परमेश्वर का भवन कहाँ है. तो पहला कुरिन्थी 3:16 में जैसे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा उसमें वास करता है, और जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा मैं उसका नाश करूंगा. तो हम स्वयं परमेश्वर का भवन है. तो आज मैंने अपने इस परमेश्वर के भवन में, इस दिल के अंदर, इस देह में मैंने क्या क्या रखा है, क्या मैंने परमेश्वर के भवन को दुर्दशा किया है, ऐसा मैं सोचता हूँ. तो सच में मैंने कहीं बार कितनी बार इस परमेश्वर के भवन को कहीं ना कहीं मैंने नुकसान पहुँचाया है, बोलने के द्वारा, काम की जगह, घर में, परिवार में आशमा, ये सब कुछ मेरे परमेश्वर के भवन में आता है जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है. परमेश्वर जबकि हमें सुधारना चाहता है अपने वचनों के द्वारा. तो मैं सोच रहा था कि प्रभु हम तेरा भवन है और हमने पश्चाताप किया, विश्वास में आए और हमने क्षमा मांगा, सब कुछ अच्छा हुआ, फिर भी हम कहीं ना कहीं गिरते हैं, घर से, परिवार में, कहीं ना कहीं हम जरूर कहीं ना कहीं गिरते हैं. तो ऐसा हमारे जीवन में क्यों होता है? तो प्रभु ने सबसे बड़ी बात बताया कि हमारे जीवन में एक प्रार्थना की कमी है. हमारे जीवन में, हमारे घर में जो प्रार्थना है वो बराबर नहीं है. हम वचन को कई पढ़ते जरूर हैं, लेकिन कई बार हम लोग अपने कामों को प्राथमिकता पहले देते हैं. प्रभु के वचन को हम लोग प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं. ब्रदर आए थे घर पे, पूछ रहे थे कि ब्रदर अबू, कई बार वो घर पे आते हैं और सही में वो हमें कुछ ना कुछ ऐसा सिखा के जाते हैं हमारे जीवन के लिए, करेक्शन करते हैं हमारे जीवन में. यहाँ भी सिखाते हैं, जब उनको प्रभु बोझ देता है तो घर पे भी आकर के हमें सिखाते हैं. ब्रदर ने सिखाया कि जो परमेश्वर का वचन है हमें रोज पढ़ना है, एक बराबर नियम से पढ़ना है, ताकि हम उसमें बने हुए रहें। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे इस कलिशा के द्वारा, ब्रदर अबू के द्वारा बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, और हमारे जीवन में जो एक क्षमा की कमी रहती है, एक क्षमा करना भी एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, प्रार्थना में कम हो जाते हैं। तो ब्रदर ने बोला कि हमें क्षमा जब तक करना है, अपनी जब तक हमारे अंदर जितनी भी ताकत है उस ताकत के अनुसार हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, घर में, परिवार में, बाहर, कहीं भी। यदि हमारे अंदर क्षमा नहीं है तो हम कहीं ना कहीं नुकसान में, कमजोर में। तो पहला सैमुएल जब उसमें दाऊद के बारे में मैंने ध्यान लगाया उसमें वचन पर, तो वहाँ पर दाऊद है, अबीगैल है और नाबाल है। तो वहाँ पर पहला सैमुएल उसका 25 अध्याय में दाऊद और अबीगैल और उसका पति नाबाल, हम देखते हैं दाऊद को एक प्रभु यीशु के रूप में हम लेते हैं, और अबीगैल की जगह अगर हम खुद को लेते हैं और नाबाल हम अपने पति के रूप में रखते हैं। नाबाल जो हमारे जीवन में जब हम पैदा होते हैं वो तब से हमारे जीवन में हम पे अधिकार करता है। नाबाल की आदत आप लोग आपने देखा है, अगर आप वचन पढ़ेंगे तो उसमें सारी बुराइयाँ थी नाबाल में, तो वही बुराइयाँ भी आज हमारे जीवन में रहती हैं। कुकर्म करना, बुरी बुरी बातें, गुस्सा, ये सब कुछ नाबाल में था, लेकिन अबीगैल ऐसी नहीं थी, उसके अंदर दया थी प्रभु के लिए और एक क्षमा की आत्मा थी उसके अंदर, लेकिन नाबाल ऐसा नहीं था। लेकिन जब हम प्रभु यीशु को स्वीकारते हैं तो हमारे जीवन से नाबाल पूरी तरह से निकल जाना चाहिए। अगर नाबाल नहीं निकलेगा तो हम प्रभु यीशु को नहीं स्वीकार पाएंगे। जैसे कि अबीगैल ने नाबाल को उसने ध्यान नहीं दिया, सीधा वो दाऊद के पास गई और उसे क्षमा मांगा कि आप मेरे पति की ओर ध्यान ना दें, वो तो सब उसका बताया, लेकिन दाऊद ने फिर उसके ऊपर दया दिखाया। वैसे ही हमारे जीवन में मैं देख रहा था कि अगर हम आज भी अपने जीवन में नाबाल को लेके चलेंगे तो हमारा घर, हमारा परिवार सिर्फ नाश की तरफ जाएगा और कुछ भी नहीं होएगा हमारे जीवन में। चाहे हम लोग यहाँ कितनी बार आए, कितनी बार भी हम प्रार्थना में हर रविवार आएंगे, उसका कुछ अर्थ नहीं रहेगा। लेकिन जब हम अपने जीवन से पूरी तरह से नाबाल को निकाल देंगे और जब अपने प्रभु यीशु को अपने पति के रूप में ग्रहण करेंगे तो ही हमारे जीवन सफल होएगा। तो मैंने अपने जीवन में जांचा, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैंने बहुत सारी कलीसिया में गया लेकिन वहाँ ज़्यादा करके छुटकारा, चंगाई के लिए प्रार्थना की जाती है, लेकिन जीवन के लिए कुछ नहीं मिलता है। मैं यहाँ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कलीसिया के लिए, इस परिवार के लिए, कि यहाँ हमें जीवन के लिए गवाही मिलती है, हमारे जीवन को सुधारने के लिए कि हमारा जीवन क्या है, हम कैसे चल रहे हैं। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। सच में जो चुनौती आती है, जो हमारे लिए करेक्शन आता है कि हमें अपने जीवन को सुधारना है और प्रभु में चलना है, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत जल्दी हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सभाएं बंद हो रही हैं, कोई पासवान को जेल में डाला जा रहा है, लोगों को सताया जा रहा है। ये अगर आप न्यूज़ में देखेंगे तो ये बातें सब हो रही हैं जो बाइबल में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो प्रभु का आगमन यथाशीघ्र होने वाला है, तो हम इन चितौनियों को ठंडेपन से ना लेकर के पूरी गहराई से, गंभीरता से लेकर के अपने जीवन में हमें जांचते हुए चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड।
पिछले सप्ताह जब मैं यही वचन से आशीषित हुआ था जो आज सुबह हमने सुना, उसी बात में एक कन्फर्मेशन प्रभु ने बताया कि परमेश्वर सच में उसी वचन से मेरे जीवन में काम करना चाहता है, और वो है यर्मिया उसका 7:3। वहां लिखा है, सेनाओं का यहोवा जो इसराइल का परमेश्वर है वो कहता है, अपनी अपनी चाल और काम को सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। इस वचन से परमेश्वर ने इतने बहुत ही एक जीवित तरीके से बात किया, जैसे कि वचन प्रभु ने मेरे लिए वहां लिखा हुआ है, और मैंने कहा कि प्रभु मुझे लगता है कि प्रभु मेरा चाल चलन सही है, लेकिन परमेश्वर आपके सामने वो कैसा है। और आज वही हमने सुबह वचन सुना कि अपने अपने चाल चलन को हमको सुधारना है, जांचना है। लेकिन जब हम देखते कि हम इसको कैसे सुधारें या इसको कैसे जांचें, तो उसका उत्तर यहां मिलता है रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन में, कि हम कैसे अपने चाल चलन को सुधारें। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो परमेश्वर ने वहां कहा कि हमको चाल चलन को सुधारना है, वही हमारे लिए एक आत्मिक घर के समान है, और हम तब कर पाएंगे कि हम जब संसार के सदृश न बनेंगे। संसार का सबसे बड़ा जो धोखा देने वाला जो स्वभाव जो है, जो चीजें नहीं है उसको दिखावटी रूप में बताना, ये संसार हमको हमेशा सिखाता है कि जो हम नहीं है उसको छिपा के हमको दिखाना है कि मैं शायद ऐसा हूं, मेरे मुझ में जो कमी है उसको मैं ढांप देता हूं और मैं उससे विपरीत दिखाने की कोशिश करता हूं। और कई बार परमेश्वर इस चीज को दिखाने लगते हैं, कई बार आत्मिक जीवन के अंदर में भी हम घमंड करते होंगे शायद हमारी नम्रता के ऊपर, जो हम यहाँ पे आते हैं और हम अपने आप को बहुत ही नम्र, या मैं अपने आप को नम्र दिखाता हूँ, बहुत आसानी से लोगों को मैं दिखावटी रूप से आत्मिक दिख सकता हूँ कि मैं बहुत नम्र हूँ मेरे गाने बजाने के द्वारा, या मेरे बात करने के द्वारा, या मेरे वचन के ज्ञान के द्वारा, कि एक नम्रता का वेश धारण करने का भी एक घमंड मेरे जीवन में हो सकता है। वो एक संसार के सदृश है, जो मैं नहीं हूं भीतर वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। परमेश्वर कहते हैं कि हम संसार के जो वैल्यूज है, उसके जो मूल्य है, उससे बाहर निकल, हम परमेश्वर के सामने जो कुछ हम हैं हम प्रभु से कहे, प्रभु मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूं, मुझे आप बदले। दूसरी चीज वहां लिखे, तुम्हारे मन के नए हो जाने से। कई बार हम देखते हैं कि हमारे अंदर एक नया मनुष्यत्व है, लेकिन फिर भी हम पाप से हारते हैं, पाप से बार बार गिरते हैं, उन्हीं पापों से परमेश्वर के पास जाकर बार बार माफी मांगते हैं। वो इसलिए होता है कि हमारा जो मनुष्य जो हमारा नया है वो मजबूत या ताकतवर नहीं हो पाया है अभी तक। और हमने गए संडे या पिछले संडे में भी एक कहावत के रूप में ब्रदर ने बताया था कि हमको वचन की तरफ वापस लौटना है, वचन की ओर हमें आगे लौटना है। वचन ही है जो हमारे मनों को और मजबूत और दृढ़ करेगा। एक कहानी मैंने सुनी थी मेरे बचपन में कि एक खेल करने वाला आदमी होता है, उसके पास दो कुत्ते होते हैं, दोनों कुत्ते बहुत ही कद में बहुत ही सेम दिखने वाले होते हैं, एक काला होता है एक सफेद होता है, और वो खेल करने के द्वारा उनसे लड़ाई लड़ने से वो पैसा कमाता है। और वो बोली लगवाता था कि एक सफेद कुत्ता आज जीतेगा, तो उस पर बोली लगाता था और पैसा, और दूसरे दिन काला कुत्ता, इस प्रकार लोग पैसे लगाते थे। किसी व्यक्ति ने उसको आकर पूछा कि भाई आप कैसे होता है, दोनों कुत्ते बहुत ही सेम दिखते हैं, दोनों में सेम ताकत है, एक ही प्रजाति के हैं, तो क्यों ऐसे कहें? तो बहुत वो व्यक्ति बोलता है, बहुत ही आसान इसका उत्तर है कि जिस कुत्ते को मैं हराना चाहता हूं उस दिन मैं उसको खाना नहीं देता हूं। और इससे हमारे जीवन के लिए भी आता है कि हमारे अंदर भी एक आत्मा है जो शरीर के विरोध में लालसा करता है, जो शरीर है वो आत्मा के विरोध में, रोमियो में जैसा लिखा है। और यहाँ जैसा लिखा है कि मन का नया तभी होगा जब हम हमारे आत्मिक, हमारा मनुष्यत्व जो भीतर है उसको हम वचन के द्वारा और मजबूत कर पाएंगे। वो कमी मैंने मेरे जीवन में देखा, और इसलिए जो शरीर जो दूसरे कुत्ते के समान है वो प्रतिदिन मेरे जीवन के ऊपर, आत्मा के ऊपर हावी होकर लालसाओं के साथ, शरीर के साथ उसके ऊपर दिखा। और आज मैं इस जरूरत को मेरे अपने जीवन के लिए लेता हूं कि उस भीतरी मनुष्यत्व के अंदर वचन के द्वारा मुझको और नया बनना है, और तगड़ा और परिपक्व होना है, ताकि मैं उस परीक्षण, उस प्रलोभन सामने, आंखों की अभिलाषा के सामने, मन के बुरे विचारों के सामने मैं विजय प्राप्त कर सू, मेरे नहीं द्वारा लेकिन मन के नए हो जाने के वचन के द्वारा और यीशु मसीह के उस सामर्थ्य के द्वारा। तो इस वचन से मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला कि सच में परमेश्वर आज हम सबों को बुला रहा है ताकि हम सब अपने चाल चलन को सच में सुधारे और देखे प्रभु, ताकि वो हमें ग्रहण करे।
इन फिलिपींस चैप्टर 1 एंड वर्स
फिलिपींस 1
एंड वर्स 7 6 एंड 7 सेज
उसका 6 और 7 में,
फॉर आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ दिस वेरी थिंग दैट ही हु हैज बिगन ए गुड वर्क इन यू विल परफेक्ट इट अंटिल द डे ऑफ क्राइस्ट, फॉर इट इज राइट फॉर मी टू फील this way about you all because I have you in my heart. So I was thinking about this word. Paul says that I have you in my heart.
और इस वचन के बारे में मैं ध्यान कर रहा था, पॉलस कहता है कि मैं आप लोगों को मेरे हृदय में रखा हूँ.
So that was what was coming to my heart, that how many people have I carried in my heart.
और एक बात ऐसा मेरे मन में आया, कितने लोगों को मेरे हृदय में मैंने लिया है।
So God wants me to have people in my heart.
और परमेश्वर यही चाहता है कि मैं लोगों को अपने हृदय में रखूं, बसा रखूं।
Not just when I come on Sunday, I meet them and I smile at them.
और ऐसा ही नहीं कि रविवार के दिन आओ, उनसे मिलो और उनसे मुस्कुराऊं।
But how many people I have carried in my heart during the week?
कितने लोगों को मैंने मेरे हृदय में सहा है, उनको मेरे हृदय में रखा है।
And it is easy for me to love someone who is a believer in United States.
और बहुत ही आसान है उस व्यक्ति से प्रेम करना जो यूनाइटेड स्टेट्स में एक विश्वासी है
और इन सम अदर कंट्री वेयर आई डोंट मीट देम,
और एक ऐसा एक देश में जिसको मैं मिलता नहीं हूँ उसको याद रखना.
बट दैट इज नॉट द टेस्ट ऑफ माई लव,
और वो एक परीक्षा नहीं है मेरा वो प्रेम का.
माई टेस्ट ऑफ माई लव इज हाउ आई कैरी पीपल इन माई लोकल चर्च,
और मेरा वो परीक्षा ये है कि मेरा जो स्थानीय कलीसिया में अपने लोगों को मैं कैसे अपने हृदय में बसा के रखता हूँ.
डू आई हैव अ बर्डन फॉर अदर्स,
क्या मेरे लिए उन लोगों के लिए वो बोझ है क्या.
हैव आई नोन द पेन ईच पर्सन इज गोइंग थ्रू,
क्या मैं उनका वो जो दर्द को मैंने समझा है क्या.
सो दैट इज इट्स नॉट जस्ट अबाउट गिविंग मनी,
और ये नहीं कि सिर्फ पैसा देना नहीं.
It is about many other things which are important in the body of Christ.
और एक परमेश्वर के देह में बहुत ही दूसरी चीज का भी महिमा रखता है.
So I want to grow in that.
और मुझे उसमें बढ़ना है.
And also one more thing in Romans chapter 12 and verse 9.
और रोमियो का 12 में 9 में हम लोग सब पढ़ सकते हैं.
It says that love should be without hypocrisy.
और जो प्रेम है वो प्रेम के अंदर कोई कपट नहीं रहना है.
One word of one song which we used to sing,
और एक गीत हम लोग ऐसे हम लोग गाते थे,
that woe to him who gives his hand when guile within he is bearing,
और उसको देन उसको दो जो हमें सहता है.
Woe to him, woe means उसके ऊपर हाय जो हाथ देता है पर दिल के अंदर कपट है उसका. So those people who give a hand, if I shake hand with someone and in my heart there is a bitter attitude, so that is a love with hypocrisy.
और मेरे अंदर वो अगर वो कपट के साथ मैं हाथ देता हूँ तो वो एक प्रेम है जिसके अंदर कपट है.
सो गॉड वॉन्ट्स मी टू हैव ए लव विच इज विदाउट हिपोक्रेसी,
और परमेश्वर चाहता है कि मेरे अंदर वो प्रेम बने रहे जिसके अंदर कोई कपट की बात ना हो.
सो मे बी इन माई हार्ट देर इज ए कोल्डनेस इन माई हार्ट,
हो सकता है मेरे हृदय के अंदर वो ठंडापन है.
आई डो नॉट लव विथ विदाउट हिपोक्रेसी,
और मैं बिना वो निष्कपट मैं प्रेम नहीं कर पाता हूँ.
सो इन दैट टाइम आई शुड हैव ए क्राई इन माई हार्ट,
और उस ऐसा एक स्थिति में मुझे अंदर ही अंदर रोना है.
लॉर्ड आई वॉन्ट टू लव विदाउट हिपोक्रेसी,
और मुझे बिना निष्कपट मुझे प्रेम करना है प्रभु जी.